अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के पांचवें स्कंध का 14वां अध्याय और श्लोक संख्या 28 पढ़ेंगे। यह प्रोज फॉर्म है, पोएट्री में नहीं है, श्लोक नहीं है, तो इसलिए केवल मैं पढ़ूंगा, रिपीटेशन नहीं हो पाएगा इसका। ये ना है ना, 28 है ना। मैं अलग से अकेले पढ़ता हूँ, आप पढ़ने की जरूरत। क्वापि देव माया स्त्रिया भुज लतोपगूढ़ प्रस्कन्न विवेक विज्ञातो यद विहार यद विहार गृहारंभा कुल हृदय तदाश्रय श्रय या वसक्त सुत दुहित्र कलत्र भासी तावलोक विचेष्टा विचेष्टिता पहृत हृदय हृदय आत्मानम आत्मान आत्मान मजितात्मा तत्पारेन्ध्यस अंधसी तमसी प्रहिणोति मेरे पीछे शब्द बोलिए क्वापि कहीं भी देव माया देव माया के वश में होकर स्त्रिया सखी या पत्नी के रूप में भुज लता वन की कोमल लताओं के सदृश सुंदर बाहुओं के द्वारा उस लिखा है ना आ रहा है ना अभी तो नहीं उपगूढ़ा अत्यधिक व्याकुल होकर प्रसन्ना खोया हुआ विवेक सत असत का ज्ञान विज्ञान विज्ञान संबंधी ज्ञान यत विहार पत्नी सुख के लिए गृह आरंभ घर की तलाश करने में आकुल हृदय व्याकुल चित होकर तत् उस घर की आश्रय आवश्यकता जो शरण में आए हुए हैं सुता पुत्रों का दुहित्री पुत्रियों का कलत्रा पत्नी का भाषित अवलोक उनके संभाषण तथा बाकी चितनों से विचेष्टितः कार्यों से चेष्टाओं से अपहृत हृदय जिनका हृदय हर लिया गया है संज्ञा शून्य आत्मानं स्वयं अजीत अवस आत्मा जिनका आत्मा अपारे अनंत अंधे घना घोर अंधकार घना अंधकार में तमसी नारकीय जीवन में प्रहिणोति गिरा देता है अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कभी कभी बद्ध जीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए आकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त गृह आदि उपलब्ध कराने का प्रयास प्रयत्न करता है। फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों चितौनों तथा कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। तात्पर्य जब बद्ध जीव को अपनी प्राणोपम पत्नी का आलिंगन प्राप्त होता है तो वह कृष्ण भावना मृत के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वह अपनी पत्नी से जितना ही अनुरक्त होता है पारिवारिक जीवन में उतरता ही उतना ही उलझता जाता है। एक बंगाली कवि श्री बंकिम चंद्र का कथन है कि प्रेमी की दृष्टि में उसकी प्रेमिका अत्यंत सुंदर होती है, भले ही वह कुरूप केव न हो। यह आकर्षण देव माया कहलाता है। पुरुष और स्त्री का यह आकर्षण दोनों के लिए बंधन का कारण है। वास्तव में ये दोनों परा प्रकृति से संबंधित हैं, परंतु दोनों ही प्रकृति स्त्री हैं, किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी वे पुरुष नर कहलाते हैं। सत्य तो यह है कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं है, किंतु ऊपर ऊपर से उन्हें पुरुष कहा जाता है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष का संयोग हो जाता है, उसका लगाव घर बार खेत मित्रता तथा धन से हो जाता है। इस तरह वे दोनों भौतिक जगत के जाल में पड़ जाते हैं। भुजलता उपगूढ़ शब्द का अर्थ है लताओं के सदृश सुंदर भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर, और यह बताता है कि किस प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक जगत द्वारा बंध जाता है। विवाहित जीवन के फलस्वरूप पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, यही परिणाम है भौतिक जगत की यही रीति है। इस भागवतम के इस भाग में भवाटवी का वर्णन किया गया है। आप लोग पूर्व अध्याय पढ़े हैं तो ऐसा कहा गया है, एक बहुत घनघोर जंगल होता है और व्यापारी वणिक उसमें जाता है, वहाँ से कुछ सामान इकट्ठा करता है और नीचे लाकर बेचता है, लाभ कमाता है। तो वह जो वणिक है व्यापारी जब जंगल में प्रवेश करता है, जीवन का उसके रिस्क लेकर प्रवेश करना पड़ता है, उसे पैसा चाहिए लाभ चाहिए, तो वहाँ से कुछ संग्रह करना होता है, उसके लिए कभी कभी बहुत खतरा होता है। वो वर्णन किया गया है क्या क्या खतरा, सिंह होते हैं, भालू होते हैं, कहीं कहीं खाड़ी होता गिर जाता है। तो उसमें एक बात कही गई थी, तो उस बात को सुखदेव गोस्वामी बताए तो रूपक के रूप में, व्यापारी प्रवेश कर रहा है जंगल में और जंगल में उसे कठिनाई कितनी हो रही है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, कहीं घायल हो जाता है, चाहे पशु उधर आकृति हो जाता है। और यह संसार का वर्णन, तो परीक्षित महाराज ने साफ अंत में कह दिया कि आप जो वर्णन कर रहे हैं एकदम क्लियर ज्ञान देने वाला है, लेकिन जो समझना बहुत कठिन है। व्यापारी जाता, हम कहाँ व्यापारी, हम कहाँ जंगल में जा रहे हैं, तो सबके लिए तो उन्होंने कहा कि हमको एकदम आपने अर्थ बताया वो समझ में नहीं आया, ठीक से समझ नहीं आया। रूपक के एलोगोरिकली मत वर्णन कीजिए, अब डायरेक्ट वर्णन कीजिए। तो उसमें एक बात उन्होंने कहा था सुखदेव गोस्वामी कि जो व्यापारी सामान इकट्ठा करने के लिए कुछ वस्तु वहां से कलेक्ट करके जाता है तो कभी कभी बहुत घनघोर लताएं होती हैं, क्रीपर होता है और क्रीपर बहुत अच्छा लगता है, उसमें फंस जाता है और उसमें निकलना बहुत कठिन होता है। बड़ी बड़ी क्रीपर समझते हैं ना, लताएं होती हैं, इतना घनघोर होता है कि उसमें ढुक जाता है इधर से और उसमें निकलना बहुत कठिन होता है। तो एक है कि हमको समझ नहीं आया, हम कहाँ जंगल में, हम तो कहीं जाते हैं, अपने घर पर रहते हैं, तब आप हमको ठीक बताइए कि ये सब जो कुछ वर्णन कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है, कैसे संसारी भौतिक लोग कैसे संसार में चक्र में गिर गए हैं। तो लता क्या है वहां पर, क्रीपर क्या है, तो उसी को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्लियर करते हैं। क्वापि देव माया या स्त्रिया भुज लतोप गूढ़ कभी कभी किसी परिस्थिति में जो जीव है मनुष्य है क्या होता है कि देव माया भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो भ्रम में डालने वाली शक्ति, उस शक्ति का मूर्तिमान एक निर्वेश सभी जो शक्ति है एनर्जी है, लेकिन वह एनर्जी व्यक्ति के रूप में हो और व्यक्ति के रूप में होती है वह एनर्जी, तो वह किस रूप में होती है? स्त्री रूप में। कैसे? तो जब स्त्री की भुजाओं में सुंदर स्त्री की भुजाएं होते हैं, कोमल भुजाएं होती हैं, वैवाहिक जीवन के द्वारा, अथवा यहां पर दो शब्द प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखा है वाइफ आर गर्लफ्रेंड, पत्नी या सहचर्य चाहे कोई हो, विवाहित पत्नी हो अथवा गर्लफ्रेंड। आप यहाँ तो कम गर्लफ्रेंड का क्या अर्थ होता है बहुत लोग नहीं जानते हैं। सहचरी, वो स्त्री विवाहित नहीं होती है लेकिन उसके साथ स्त्री जैसा अपनी पत्नी जैसा ही व्यवहार होता है, उसको सहचरी चाहे गर्लफ्रेंड, अंग्रेजी में प्रोपर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात कर। तो जब व्यक्ति किसी स्त्री के भुजाओं में आता है, स्त्री उसको आलिंगन करती है, जब आलिंगन करते वह इतना होता है कि अब उसे उससे निकल पाना एकदम सब कुछ भूल जाता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या, एकदम कंप्लीटली भूल जाता है। अब उसके जीवन में केवल और केवल एक बात रहती है जो उस स्त्री के साथ होता है, तो वह चक्कर लगाने लगता है कि अब स्त्री को प्रोटेक्शन देना है तो घर बनाना चाहिए, उसके लिए उसका विवेक तो खत्म हो गया, तो यद वहाँ बढ़िया से रहने उसके लिए बिहार के लिए गृह घर, विवाह हो गया स्त्री मिल गई तो घर चाहिए ना, ऐसे तो कहीं चाहे ब्रह्मचारी हैं आश्रम में कहीं चटाई बिछा कर सो गए, नहीं तो बरामदा में भी सो रात को क्या थे कर। लेकिन स्त्री आ गई तो अब विवेक नहीं रहा, भक्ति करना हो तो नष्ट ही होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, एकदम अंधकार चालू होता, तो अब उसके लिए घर गृह आरंभ कुल, अंग्रेजी में जो लिखा है तो उसे घर चाहिए और घर के साथ एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है कुल, उसका अर्थ होता है कि जहाँ आग जलता है, कभी कभी बरसात सर्दियों के मौसम में घर में एक जगह आग लोग जला देते हैं, अच्छा तरह बढ़ जाते हैं, कंफर्टेबल ना रहता है, विदेशों में ऐसा होता है, फायर प्लेस कहा जाता है। तो केवल घर ही नहीं, अब ठंडा घर है, अब उस समय एसी की बात नहीं हो, घर ठंडा है तो गर्म चाहिए तो आग जला दे, तो घर चाहिए और घर के आजू बाजू में थोड़ा सा गर्म एक तो वह चाहिए, अथवा केवल घर से काम नहीं चले, किचन चाहिए, घर चाहिए, घर कैसा हो एक किचन चाहिए, किचन हो गया तो स्त्री के साथ रहने लगे तब उसका बाई प्रोडक्ट होता है और भी होते हैं इसमें, स्त्री पुरुष मिलते तब उसका आश्रय घर का लेता है, तब पुत्र सुत, सुत मतलब पुत्र, विवाह होता है तो स्वाभाविक उसका फल है पुत्र होता है, पुत्री होती है और स्त्री तो है ही, अब तीन लोग हो गए, पहले तो अकेले स्त्री थी, दो लोग जुड़ गए, पुत्र हो गए और पुत्रियां हो गई, तो वो आते हैं तो क्या होता है, स्त्री को देखकर पहले से उस पर उसके मति भीड़, अब केवल उसको देखना चाहता है, और बच्चे स्त्रियां छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ बोलते हैं, उनकी आवाज कल भाषण तोतली भाषा में लड़खड़ाते हुए बोलते हैं फ्लटरिंग, उसको इतना बढ़िया लगता है, अब उसी में आ सकते हैं बच्चों की आवाज सुनना है, और कभी कभी बच्चे कुछ आवाज उनकी और कुछ क्रिया करते हैं, वो देखते हैं कि खेलते हैं अच्छे का, अथवा कभी कभी आकर क्या बैठ जाते हैं गोद में और उनकी उंगलियां भी बिल्कुल नरम होती है, छोटे छोटे बच्चे कान में उंगली डालते हैं आपके कान में, बच्चे छोटे छोटे इधर डालते हैं तो वो इतना बढ़िया लगता है उनका शब्द सुनना। अब वो तो मतलब जो ब्रह्मानंद में उसके अतिरिक्त कुछ बुरा सब इसके बाद शब्द सुन लिए उनका रूप और इसके साथ उनकी कुछ क्रियाएं हैं, कभी दौड़ते हैं इधर से उधर दौड़ते हैं, इधर करते हैं समान इधर करते हैं, कभी गोद में बैठ जाते हैं उंगली में चाहे इधर उधर कान के आसपास उंगली से करते हैं इसे पर ऐसे हो जाता है तो एकदम जब यह स्थिति आती है, जब यह स्थिति आती है तो अब वो क्या कुछ भी उसको पता नहीं लगता है। ऐसे ही करते करते बुढ़ापा आ जाता है, भक्ति का तो कुछ हुआ नहीं, घोर अंध तमह प्रहिणोती, व्यक्ति का प्रहिणोती का है कि उसमें फेंक देना, फेंकना और रखना मत समझते हैं, जैसे हम इसको झोले को ऐसे रह कर यहाँ पर यह फेंकना नहीं है लेकिन इसको हम लेकर ऐसे जोर से फोर्स करते हैं उसको फेंकना है, तो शब्द का संस्कृत में यहाँ पर प्रहिणोती उसे एक नरक में अंध तमसी में अंधकार में जगत के संस्कार में जोर से माया के द्वारा फेंक दिया जाता है। ऐसे नहीं कि धीरे से उठाकर उसको माया में ढकेल रख दिया जाए, नरक में यहां से लेकर माया जोर से इतना जोर से ताकत से पटकती है वहां तो दुख है ही, धीरे बढ़िया आराम से जाएंगे तभी दुख है लेकिन एकदम प्रहिणोती एकदम प्रक्षिप्त गिरा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं कहा था कि जंगल में लताएं होती उसमें फंस जाता है जीव, लता वो तो रूपक है, ये वास्तविक है, यह जगत यह स्थिति है, हाथ ही स्त्री का जो हाथ है आर्म है वही लता उसमें फंसने के बाद एक बार अब कोई चांस नहीं है निकलने का, कोई निकल वहाँ वो कहा गया है उस जगह पर तेरह कि भाई उसमें लताओं में इतना इधर उधर उलझी होती है वो निकल नहीं पाता है वहीं रहता है। अब वहाँ तो कोई गांव है नहीं, जंगल में है, लताओं में फंस गया तो कितना दिन जीवित रहेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन, पानी भी नहीं पी सकता, अब वहाँ तो कहीं जा ही नहीं तो खा ही नहीं सकता तो उसकी क्या दुर्गति होती होगी। तो घर गृहस्थी में फंसने का मतलब अब कहते डायरेक्ट अर्थ है, यहाँ पर डायरेक्ट अर्थ है यह समझ में, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति होती है। यह वैदिक ग्रंथों में बार बार यह बात कही गई है, संसार में आकर्षण के बंधन के बहुत कारण होते हैं, मित्र में भी आसक्ति हो सकती है, परिवार में भी आसक्ति होती है। भागवतम में न तथास्य भवेन मोहो बंधस्यान्य प्रसंगतः योषित संगत यथा पुंसो यथा तत्संगी संगत, संसार में बहुत से कारणों से हमारा बंधन होता है, अज्ञान होता है, लेकिन वैसा बंधन कड़ा बंधन सुदृढ़ बंधन दुखमय बंधन और मोह भ्रम अज्ञान किसी भी कारण से नहीं होता है जितना स्त्री के संग से होता है। सबसे बड़ा मोह का इल्यूजन का बंधन का और स्ट्रांग बंधन इतना बड़ा इतना लोहे की जंजीर से भी होता है कि स्त्री संगी संगता एसोसिएशन ऑफ स्त्री, और जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है उन दो की बात भागवत में कही, स्त्री और स्त्री में आसक्त व्यक्ति यदि उसके साथ रहने से जितना भारी जीवन में अज्ञान आता है, जितना भारी बंधन आता है, अन्य किसी भी कारण से नहीं आ सकता है। धन में भी आसक्ति लोगों की होती है उसे ही बंधन होता है, मित्र में भी आपकी आसक्ति होती है उसे भी बंधन होता है, पुत्र में आसक्ति उसे भी बंधन होता है, पिता में आसक्ति होती है उसे भी बंधन होता है, लेकिन स्त्री में जित आसक्त होने से और स्त्री के जो स्त्री में आसक्त है उसमें के साथ संग करने से जितना भारी बंधन, जितना भारी मोह, जितना भारी अज्ञान होता है, अन्य किसी भी साधन से नहीं होता है। इतना ज्यादा नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। वहीं पर ये कपिल देव कह रहे हैं, भगवान कपिल देव बातें जब कर रहे थे अपनी माँ से, स्त्री में आसक्त व्यक्ति होता है अथवा स्त्री संगी के आसक्त होता है, उसका एसोसिएट करता है, इमीडिएटली कुछ लिस्ट मैं बता रहा हूं, उसकी आशा नहीं करना चाहिए। शौचम सत्यम, जो स्त्री में आसक्त होगा उससे आशा मत कीजिए कि उस सत्य भाषण को, झूठ बोलेगा ही बोलेगा। वो सत्य से शौचम सफाई गंदा रहेगा, स्त्री के साथ है मतलब गंदा पे, मन से भी गंदा और बाहर से भी गंदा। अरे होता ही है, लड़के छोटे छोटे बच्चे पेशाब कर देते, चट्टी कर देते, कर देते, घूम रहे घूम रहे पेशाब हो गया, तब वहां आशा मत कीजिए कि गृहस्थ वहां पूरी सफाई रहेगी, गंदा ही गंदगी रहेगी। दया, अपने बच्चों पत्नी के अतिरिक्त दया उसमें किसी प्राणी के लिए दया नहीं। इन लोगों के भरण पोषण के लिए किसी को मार सकता है, काट सकता है, सता सकता है। मौनम, वो चुप नहीं रह सकता है, गंभीरता एकदम बोलखड़ा उठाएगा। बुद्धि, क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अब ऐसा मत कीजिए कि बेचारे के पास ब्रेन सब्सटेंस उसके पास रहे, उसमें निकल कर भाग जाए। श्री सौंदर्य, चाहे अपुण्य धन, ह्री लज्जा, उसे कुछ भी करने में उसे लज्जा नहीं आएगी, जश उसका एकदम खत्म हो जाएगा, जश रेपुटेशन है, जश उसका छोट भाग देता है। क्षमा, उसमें क्षमा नहीं रह सकता। सम माने मन पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। दम, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। भोग, उसके पास धन संपत्ति भी नहीं रहेगा, ऐश्वर्य थोड़ा पैसा भी रखे हैं तो इधर उधर चला जाए। यह संगात यदि संक्षेप, इन चीजों का मतलब सत्य, दया, शौच, मौन, बुद्धि, लज्जा, धन, यश, क्षमा, सौम, दम और ऐश्वर्य, इसका पूरा पूरा नाश हो जाता है। दया संशय वहां कहा गया, संक्षम पूरा पूरा क्षयित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को कहते हैं। अंतिम में सेंटेंस है, भुज लता उपगूढ़ शब्द का अर्थ है लताओं के सदृश सुंदर भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर। यह बताता है कि किस प्रकार बुद्धि भौतिक जगत द्वारा बंध जाता है। ऐसा नहीं कि स्त्री हमेशा उसे जकड़ कर बांध कर रखती है, वो जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाए बंधन लगा रहता है, हमेशा चिंतन मनो जो का मन का जो फ्लो है, चेतना की जो प्रवाह है उधर ही रहता है, चाहे वो कहीं रहे। कभी कभी वो फील करता है कि हम फ्री हैं। हम लोग गांव में देखते होंगे कभी कभी बकरी को एक लहास में बांध दिया जाता है, लहास समझते हैं ना, बड़ी रस्सी होती है बकरी के गले में बांध और एक खूंटा में बांध देता है, घूम आजू बाजू चरती रहती है। जितना लहास बड़ा होता है देखे हैं ना, गाय को भी लोग बांध देते हैं खेत में और रस्सी होती है ऐसे, उसको बड़ा होता है तो बड़े घूमती रहती है, खाती रहती है। तो कभी कभी बकरी को जब दूर नहीं गए है तो लगता है कि फिर ये घूम रही है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अब उधर जाना चाहती है जहां तक रस्सी तक रहता है, एक जगह लगता है कि अरे बंधन है। तो कभी कभी गृह ना क्या ठीक ही है, स्त्री भी जप करती है भजन करते बाद में तो नहीं लगता है क्या। लेकिन लहास जितना लहास थोड़ा आगे बढ़ेगा जहां तक 20 फीट का लहास है उससे जाएगा तो बकरी को पता लगेगा कि ना उधर तो खींच जाता है, उधर से ज्यादा नहीं जा सकती। तो अब इसमें देखिए भागवत में बात कहने के लिए यद्यपि देखिए ऐसे अश्लील जैसा हो रहा है, बल्गर जिसे संस्कृत में कहते हैं अश्लील भाषा, भागवतम के कक्षा में सन्यासी को ये नहीं होना चाहिए कि क्या स्त्री पुरुष क्या करते होंगे, क्या जरूरत भागवतम में, भागवतम कृष्ण कथा कहनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि रोज कथा कहना ही है और इस श्लोक को स्किप भी नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे बढ़िया वाला कहेंगे, तो हमारी भी लाचारी है व्यवस्था कि इस बातों को कह देना पड़ता है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि स्त्री है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, उसका मूर्तिमान रूप, एक मूर्तिमान से पर्सनिफिकेशन स्त्री है। इस बात को एक बार प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिए हैं कि यहां पर चाहे कोई पुरुष के मेल बॉडी में है अथवा फीमेल बॉडी में, दोनों ही स्त्री हैं। अब तात्पर्य फिर क्योंकि जो जीव है शुद्ध रूप में वह भगवान की अतरंगा शक्ति का स्फुलिंग है, अतरंगा शक्ति भगवान का अंश है, भगवान सच्चिदानंद है तो जीव भी सच्चिदानंद है। चाहे वो स्त्री के शरीर में है चाहे पुरुष के शरीर में, ये पुरुष के शरीर में रहता है तभी वह स्त्री है। कैसे वह श्लोक है प्रकृति का दै है ना, भगवान अपनी अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हैं, भगवद गीता का श्लोक याद नहीं है किसी को, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि वच अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, आकाश है पानी है बादल है सब बहिरंगा शक्ति, अपरेयम मितस्तन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो यजेत धारयति जगत। हे अर्जुन मेरी एक अतरंगा शक्ति है वह जीव भूता जीव के रूप में है, तो यहाँ चाहे कोई जीव चाहे स्त्री के शरीर में है अथवा पुरुष के शरीर, प्रकृति है भगवान की प्रकृति है, वह भगवान के भोग के लिए है, भोक्ता भगवान है और एक जीव है भोग्य है। लेकिन फिर भी जब सुपरफिशियली बाह्य रूप से वर्णन कर दिया जाता है कि स्त्री के शरीर में पुरुष के शरीर में है तो उसको हम लोग पुरुष कह देते हैं, स्त्री के शरीर में है तो उसको स्त्री कह देते हैं, लेकिन जीव रूह आत्मा वो न तो पुरुष है और न तो स्त्री, यदि है भी आप कहना ही है तो स्त्री ही है। लेकिन तो यहाँ जो प्रभुपाद जी बात कहना चाहते हैं कि स्त्री भी प्रक्षिप्त होती है पुरुष के भुजाओं के, पुरुष के बाह के भुजाओं आलिंगन में आती है तो वह भी सब कुछ भूल जाती है और इस तरह जीव माया में गिर जाता है, उसका बंधन होता है। तो ये बड़ी भारी खतरा है। अब तो यहाँ कह दे कि अब उधर अब फिर निकलने का तो अभी मनुष्य शरीर मिला, जब इसी समय वृंदावन में रहे अभी नहीं निकल तो कहाँ फेंक देंगे, चाइना में जन्म हो जाएगा तो कैसे निकलेंगे भव बंधन से, संसार सागर से नहीं निकल सकते, बहुत कठिन होता है। तो उसी संदर्भ में प्रभुपाद जी यह बात कह देते हैं कि बंधन होता है, मोह होता है, अज्ञान होता है बहुत से कारण से, लेकिन स्त्री के एसोसिएशन से जितना अज्ञान जितना बंध और जितना स्ट्रांग होता
और टूट जाता है। खूब मित्र बने हुए मित्र में झगड़ा हो जाता है, एकदम दूसरे के बाहर भाग जाते हैं। पता ना, मित्र हैं जानलेवा दुश्मन बने। हालांकि उस समय शायद डाइवोर्स की प्रथा नहीं हुई, इस समय तो स्त्रियां भी जानी दुश्मन बन जाती हैं, जो पुरुष भी स्त्री जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो कुछ पूछिए, हम अब विस्तार करेंगे तो बहुत कहा जा सकता है, लेकिन जो इस श्लोक में बात कही गई है यही पर। मुझे पहले कहा गया था कि बनिया जाता है तो जंगल में उसमें फंस जाता है, लताओं में कहीं ऐसे ढुक जाता है, उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमको नहीं समझ में आई कहाँ, तब तो बताते हैं कि वो जो लता है, क्रीपर क्या है, क्रीपर क्या है, स्त्री अथवा पुरुष का हाथ, और उसके ग्रिप में, पकड़ में एक बार आ गया तो बस खत्म। प्रहिणोति, जीव को छिप एकदम जोर से फोर्सफुल फेंक दिया जाता है। हम इसको ऐसे उठा कर रखेंगे, इसको रखना इसे रखा है, और फोर्सफुली हम इसको थ्रो करेंगे, फेंकना वह है। प्रहिणोति माने तेजी से, ऐसे हम धीरे से करेंगे तो उतना एकदम पकड़ कर इतना पूरी ताकत लगाकर फेंक देंगे। अरे गिरते समय ही हाथ पर टूट जाएगा, वहां से फिर कैसे निकलने, ऐसे ही वो कठिन है। अच्छा पैर रहेगा अभी तभी नहीं निकल सकते, अब वहां पर इतना जोर से गिरे कि टूट गया वहीं पर पैर, तब कहां से निकल कर आएंगे। माथा फट गया, भूंकू देवी खत्म हुई, किधर जाना है पता नहीं, कौन काम से सो। ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्या तो माइक से बोले, समझ सुने में नहीं आया, चाहे नजदीक हो जाए ना थोड़ा सा। कहते हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ, वे कैसे माया से पार होंगे? इसका उत्तर भक्ति विनोद जी दिए। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। गृहे थाको, थाको मतलब चाहे घर में रहिए चाहे बने, गृहे थाको बने थाको चाहे घर में रहिए अथवा वन में रहिए, सदा हमेशा हरि बोले डाको। तो अब पता नहीं भक्ति विनोद जी क्यों होगा, बोलने को डाकना, जो जोर से बोलते हैं उसको डाकना कहते हैं। तो मतलब चाहे घर में रहिए चाहे वन में, भक्ति विनोदम फल हरि बोले डाको, थोड़ा सा ऊंचा स्वर में हरि, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे। हम थोड़ा सा क्लियर करना छोड़, जो एक तो बता दी, जो भी है वो स्त्री ही है, जो भी चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में आप रहते हैं, चाहे भले ही इंद्र प्रभु स्त्रियों को वहां नहीं जाने देते थे, अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, स्त्रियां नहीं जा सकती हैं। तो जो स्त्री के शरीर में स्त्री हो तो नहीं जा सकती, लेकिन पुरुष के शरीर में जो स्त्री है तो रोज झुक रही है, उनके रूम में भी झुक कर पड़ती है। तो जीव के तत्व विचार से सभी स्त्री हैं, एक ब्रह्मचारी दो लोग रहते हैं, तो मान लीजिए दोनों ही स्त्री रह रही है, एक ही घर में दो रही स्त्री रह रही है ना, जीव है तो पुरुष नहीं है, अपरेय मितस्तन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम। भगवान कहते हैं कि मेरी एक सुपीरियर एनर्जी है, वो प्रकृति स्त्री है, प्रकृति कहते हैं, पुरुष नहीं कहते हैं, हमारी एक दूसरी प्रकृति है, स्त्रीलिंग प्रकृति है, वह जीव भूतम, जीव जीव सब स्त्री ही है। आप एक ब्रह्मचारी के दूसरे ब्रह्मचारी का के साथ रह रहे हैं, मतलब कि यदि अपने को पुरुष मानते दूसरा तो स्त्री है, भगवान कहते हैं कि स्त्री है तो भाई भाई बर घरे गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, हमको भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो हम इससे बन जाएंगे, अन्यथा इसे बचना कठिन है। चाहे कोई सन्यासी के शरीर में हो, चाहे ब्रह्मचारी के शरीर में हो, गृहस्थ के शरीर में है, रूपक के सब इसमें जीव मात्र इसमें फंसा हुआ है। मैंने ऐसा कुछ अजीब यह खेल है माया का कि उसमें से निकल भगवान का नाम का आश्रय लेकर उसे निकल जाने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहकर न गृहम गृह मित्याहु, गृहस्थ में जो ईंटा सीमेंट और पत्थर और ब्रिक से घर नहीं बनता है, गृहस्थ कहा जाता है मैंने घर में जो है, घर गृहस्थ में गृह तो घर क्या, जो सन्यासी लोग रहते हैं वो भी तो घर में रहते हो, कहाँ रह रहे ब्रह्मचर्य, घर ईंटा है ना, दीवार है चारों तरफ उसे ही घर पर, तो यह घर नहीं है, वास्तविक घर स्त्री है, वास्तविक घर जिसे कहा जाता है ईंटा से और सीमेंट से बना हुआ चारदीवारी स्लैब लगा वो घर नहीं होता है तो वह तो सन्यासस्थ कोई भी ब्रह्मचारी भी तो अभी तो घरस्थ ही है ना, गृह में ही रह रहा है ना, कहाँ बाहर रहता है, पेड़ तर कौन सोता है सनातन गोस्वामी की तरह, तो वह भी तो गृहस्थ ही है घर गृहस्थ घर में जो स्थित है, तो चाहे जो कोई, तो इसीलिए मतलब कि गृहे था को बने था को सदा हरि बोले डाको, बस केवल के भर हरि नाम का आधार है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में, चाहे सन्यास आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम, अलग अलग अब रास्ता नहीं है कि गृहस्थ को कुछ और करना है, ब्रह्मचारी को कुछ और करना है। हरे नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 प्रति, दूसरा ऐसा भेद नहीं है, गृहस्थ के लिए दूसरा साधन है, ब्रह्मचारी के लिए दूसरा साधन, थोड़ा व्यवहार में व्यवहारिक में अंतर है, लेकिन वास्तविक मूल साधन है, चाहे वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, केवल भगवान का नाम ही आधार है। हो सकता है कि कहीं परिचय होगा न अस्ति न अस्ति न अस्ति, कुछ दूसरा नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है, दूसरा साधन है, गृह था को बने था को सदा हरि बोले डा तो जब हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो हम लोग माया से मुक्त हो जाते। एक जगह भागवतम में वर्णन किया गया है कि जो भगवान का आश्रय लेता है, चाहे कहीं भी रहता है, चाहे घर है चाहे गृहस्थी, माया उसको टच ही नहीं कर पाती, गृहस्थ रहेगा तभी यदि भगवान का आश्रय लिया है तो उसको टच नहीं, तो ये कहीं साधन है गंभीर होकर हम लोगों को नम्र होकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन से सबका उद्धार हो। ठीक ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।